मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 4 जनवरी 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ ही स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी 19 फरवरी को होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है महेश कुमार तिवारी, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो महेश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब हम न्यूज एनालिसिस पर आते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं एआईआर न्यूज से। दोस्तों, एआईआर न्यूज में दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो यूं कह लीजिए कि अपने आप में एक बात, एक न्यूज तो उसमें टॉपिक के रूप में हो सकती है और दूसरी न्यूज केवल एक इंफॉर्मेशन के रूप में। पहली जो खबर थी वह जो सबसे अधिक जिसे वक्त भी दिया गया, आपने देखा है कि जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस है उसका अधिवेशन तिरुपति में हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस अधिवेशन का उद्घाटन किया। मैं आज इस अधिवेशन के माध्यम से आप पर कुछ एक अलग ही तरीके की बात करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं, जो दूसरा टॉपिक है, मैं कंटेंट टॉपिक नहीं कहना चाहिए तो बता दूं, वह है बजट सत्र का। इस बार का जो बजट सत्र है हमारा 31 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। आपको मालूम है कि अब बजट जो पेश होगा वो उसकी डेट बदली जा चुकी है। रेलवे और जो जनरल बजट, आम बजट जिसे हम कहते हैं, दोनों एक ही वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी कि रेलवे बजट के अलग अस्तित्व को खत्म कर दिया गया है। न्यूज में आपने ये भी सुना कि अब राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये सत्र हो मतलब 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा और जो हमारे कैबिनेट की जो संसदीय मामलों की समिति है उसने यह फैसला लिया है कि 31 जनवरी को ये अधिवेशन बुलाया जाएगा। मित्रों, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब जो सिविल सर्विस प्री एग्जाम होता है उनमें इन चीजों की बात होती है, इन चीजों की चर्चा, इन चीजों के बारे में यूं कह लीजिए कि पूछ लिया जाता है। तो अब थोड़ा सा आपको स्पेशली केवल कॉन्स्टिट्यूशन या कह लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस तक सीमित है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी से ही इस तरह के थोड़े से बारीक जानकारी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, अदरवाइज तो फिर सामान्य ढंग के ही प्रश्न होते हैं। तो मित्रों, ये दो खबरें थी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है, जो आज मैं अलग तरीके से आपसे बात करने जा रहा हूं, वह राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस को लेकर। मित्रों, ये जो हमारा जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, कह लीजिए इसका इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इसका नाम है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, तो इसे आप कहेंगे भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये अंग्रेजों के समय में ये संगठन बना था, मैं समझे ऑलमोस्ट 1914 में शायद इस संगठन की स्थापना हुई थी और आज लगभग 30,000 जो साइंटिस्ट हैं वो इसके मेंबर हैं और इसकी शुरुआत उस समय के दो ब्रिटिशर्स ने की थी। 1914 में ये संगठन बना था, तो आप सोच सकते हैं कि 112-13 साल पुराना ये संगठन है, अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होगा। इस बार का फ्रेंड जो टॉपिक रखा गया है, हर साल इसमें एक टॉपिक दिया जाता है और इसका सम्मेलन हर वर्ष होता है और हर वर्ष की जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है, एक परंपरा सी बन गई, जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका अधिवेशन होता है और उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक रखा जाता है, उस पर फिर विस्तार से बातें होती हैं। और इस बार का जो टॉपिक है, न्यूज में आपने सुना, राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी, मतलब कैसे हम विज्ञान और तकनीकी को राष्ट्र के विकास से जोड़े, ये इसका विषय है। मित्रों, आज जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसी टॉपिक को आधार बनाकर आपसे थोड़े अलग तरीके से बातें करना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2030 तक भारत दुनिया के तीन श्रेष्ठ जो विज्ञान के क्षेत्र में जो राष्ट्र हैं उसमें से एक राष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों, चलिए, लीडर के रूप में ये बात प्रेरणादायी है और कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि यह होगा कैसे। मैं आज इसी पर आपसे बात करूंगा और यह आप मेरी जो बातचीत है आपकी मदद करेगी, खासकर एसे राइटिंग में या सामान्य तरह से किसी चीज का विश्लेषण कैसे किया जाता है, कैसे हम किसी भी बिंदु को या किसी भी टॉपिक को अलग अलग तरीके से विस्तार देकर के देख सकते हैं, क्या क्या कंटेंट लाया जाना चाहिए, इन सबको मिला जुला कर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। यूं कह लीजिए कि मैं आज आपसे ऐसे के ऊपर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो देखिए, हमारे अपने ग्रंथों में ये मत सोचे कि विज्ञान कोई फॉरेन कंट्री की देन है, वेस्ट की देन है। हमारे यहां जो विज्ञान की परिभाषा दी गई है हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्हें हम वैज्ञानिक ही कहते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे, आप ये मत समझिए कि वो वैज्ञानिक नहीं थे, वो वैज्ञानिक ही थे। ये बात अलग है कि वो समाज वैज्ञानिक से लेकर के और वास्तव में विज्ञान के वैज्ञानिक तक रहे। आपको आर्यभट्ट क्या दिखाए लगते हैं? आर्यभट्ट अपने आप में विज्ञान रहे। आपको चरक और सुश्रुत का नाम आप लोगों ने सुना है, जो एक तरीके से मेडिकल साइंस में जिन्होंने गजब का काम किया है। आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, गणित और ज्योतिष के इतने बड़े आचार्य हुए हैं। चाहे आप उन्हें अंतरिक्ष शास्त्री मान लीजिए, चाहे आप उन्हें गणितज्ञ मान लीजिए, ये सब के सब वैज्ञानिक ही हुए हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है जो भारतीय मेधा की, आरंभ के अगर आप संस्कृति को उठा करके देखिए या पूरी दुनिया के इतिहास को देखिए, तो आपको जानकर यह सुखद आश्चर्य होगा कि भारत से अधिक वैज्ञानिक राष्ट्र कोई था ही नहीं। वैज्ञानिक हर दृष्टि से, चाहे वो समाज की संरचना हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे फिर विषय ही क्यों ना हो। मतलब विषय की बात मैं कह रहा हूं कि जो सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं, ये विषय ही क्यों ना हो, भारत की जो चेतना रही है वो शुरू से जबरदस्त रूप से एक वैज्ञानिक चेतना रही है। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा जो हमारे वेदों में मिलती है वो बहुत क्लियर है, और वो परिभाषा है कि जब किसी ज्ञान को अप्लाई किया जाता है तो वह विज्ञान हो जाता है। नॉलेज अपने आप में विज्ञान नहीं है, उसका जो अप्लाइड फॉर्म है वह विज्ञान है। ज्ञान का उपयोग किया जाना विज्ञान है। यह हमारे यहां विज्ञान को परिभाषित किया गया है। तो ज्ञान से अलग विज्ञान नहीं है, राइट फ्रेंड्स? फिर आप आगे चलकर के देखेंगे कि भारत ने हमेशा ज्ञान और विज्ञान के केंद्र में प्रकृति को माना है। और सच पूछे तो वेस्ट में भी है, पूरी दुनिया में अब यही चल रहा है कि विज्ञान मूलतः क्या है, प्रकृति विज्ञान है। प्रकृति विज्ञान से भरा हुआ है, प्रकृति का जो संचालन हो रहा है वो एक वैज्ञानिक नियम के तहत हो रहा है। हमें नहीं मालूम है कि ये नियम क्या है, और जैसे ही हम उसमें से किसी नियम को जान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वह विज्ञान का हिस्सा बन जाता है। सेव अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर रहा था और वो प्रकृति का नियम था। हम नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों होता है, ये जमीन पर ही क्यों आता है, उड़ क्यों नहीं जाता है। न्यूटन ने इस पर विचार किया, वो समझ गया कि ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर ली और वो विज्ञान का एक चैप्टर बन गया। तो प्रकृति में तो विज्ञान भरा पड़ा है, प्रकृति विज्ञान के तहत ही काम कर रही है, इसीलिए वो सेल्फ सस्टेन्ड है। कोई प्रकृति में कोई चाबी नहीं भरता, ये तो लगातार अपना काम करती चली जा रही। जो आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टीन ने यही कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने चाबी भर दी है प्रकृति को और छोड़ दिया है, ऑटोमेटिक सिस्टम से प्रकृति काम कर रही है। उन्हीं रहस्यों को जानना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फलाने फलानी चीजें बन गई हैं, अदरवाइज तो प्रकृति विज्ञान ही है और भारतीय दर्शन इसी पर आधारित है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय जीवन प्रणाली इतनी जबरदस्त रूप से वैज्ञानिक प्रणाली रही है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा। कभी आप उसका विश्लेषण करके देखिए, क्योंकि हमारी जो जीवन प्रणाली थी वह पूरी तरह से प्रकृति के सामंजस्य पर आधारित थी, प्रकृति के शोषण पर आधारित नहीं थी। यहां दोस्तों आपको ईस्ट के फिलॉसफी और वेस्ट की फिलॉसफी में एक बहुत स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देगा कि जो ईस्ट की फिलॉसफी है, जो पूर्वी देशों का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, जो दार्शनिकता है, वो प्रकृति के सामंजस्य पर आधारित है, वो प्रकृति से सामंजस्य की बात करती है। आप हमारे घरों में देखिए, आप पुराने लोगों को देखिए, मान लीजिए कि एक कपड़ा है, साड़ी है, दादी की साड़ी है, राइट, फट जाती है, हम फेंक देते हैं। आप देखिए कि उसके कितने लेवल पर रिसाइकलिंग होती है। दादी की साड़ी फट गई, ठीक है, तो क्या किसी छोटे बच्चे का कुछ बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, कोई बात नहीं, कई साड़ियां हो जाएंगी तो उससे रजाई बनाई जा सकती है, उसका भी छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा तो उससे तकिया कप बनाया जा सकता है, और कुछ नहीं हो जाएगा तो उससे थैले बनाए जा सकते हैं, थैला भी जब खराब हो जाएगा और रजाई भी जब फट जाएगी तो उससे पोछा लगाया जा सकता है घर का। आप देख रहे हैं लेवल ऑफ रिसाइकलिंग, और यह रिसाइकलिंग इसलिए है कि हम प्रकृति का दोहन न करें। लेकिन जो वेस्ट की फिलॉसफी है, प्रकृति के दोहन पर आधारित फिलॉसफी है, प्रकृति का शोषण करना है, प्रकृति का दोहन करना है, इसीलिए वो प्रकृति के विजय, प्रकृति को विजय करने के दंभ में चलने वाली फिलॉसफी है कि हमको प्रकृति को जीतना है। ईस्ट की फिलॉसफी प्रकृति को जीतने की फिलॉसफी नहीं है, वो प्रकृति के साथ जीने की फिलॉसफी है। तो मित्रों, यहां से विज्ञान का जो, विज्ञान की जो दृष्टि हुई वो अलग अलग हुई। अब हुआ क्या कि जब हमने भी अपने विज्ञान को वेस्ट के साइंस के नजरिए से देखना शुरू किया, वहां हम गड़बड़ाने लगे। मुझे ऐसा लगता है दो चीजें घटित हुई। पहली तो यह है कि जो विज्ञान जो पनपता है, जो विज्ञान के लिए जो वातावरण चाहिए, वो वातावरण मित्रों खुलेपन में होता है। आपकी सोसाइटी जितनी अधिक खुले विचारों की होगी, जहां वैचारिक स्वतंत्रताएं होंगी, जहां जीवन की आजादी होगी, जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिक चेतना है, उतनी ज्यादा विकसित होगी, क्योंकि विज्ञान खुले में विकसित होता है। आप किसी के विचारों को दबा करके चाहे कि विज्ञान पैदा हो जाए तो वो नहीं हो सकता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि भारत में छठवीं सातवीं शताब्दी के बाद, अगर आप इतिहास को देखें तो हमारे इतिहास में एक कंजर्वेशन का दौर शुरू हो गया, कंजर्वेटिव चीजों का दौर शुरू हो गया, मतलब वैचारिक दृष्टि से हम संकीर्ण होने लगे। जाति प्रथा, दुनिया भर की परंपराएं, दुनिया भर की रीति रिवाज, धर्म, पता नहीं क्या क्या चीजें, मतलब हमने लोगों के दिमाग पर, चेतना पर, दुनिया भर के इतने कानून, इतनी परंपराएं, इतनी सीमाएं, इतनी ज्यादा चीजें लाद दी कि उसकी जो स्वतंत्रता है वो नष्ट होने लगी। और जब स्वतंत्रता नष्ट होने लगी तो उसमें फूलेगा फलेगा कोई चीज कैसे? जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी जमीन ले लीजिए, उस जमीन में खूब सारा खाद, बहुत अच्छा खाद मिला दीजिए और उसमें बहुत अच्छे मजबूत, बहुत स्वस्थ बीज डाल दीजिए और पानी भी देते रहिए, सूरज की रोशनी भी मिल रही है, हवा भी मिल रही है, लेकिन आपने उस बीज के ऊपर एक ईंट रख दी है। अब वो बीज कैसे पनपेगा, कैसे अंकुरित होगा? विज्ञान के साथ यही होता है। विज्ञान का मतलब है नवीन विचार, नई दृष्टि, एक ऐसी नई दृष्टि जो दुनिया को बदल दे। तो हमने उसके ऊपर, अपनी चेतना के ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए, वो स्वतंत्रता खत्म हो गई। जब स्वतंत्रता खत्म हो गई तो उड़ान भरने वाले हमारी चेतना के पंख कट गए, हम कुछ भी नया करने में असमर्थ होने लगे। और यही होने लगा, वेस्ट ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। वो कैथोलिक धर्म को लेकर के चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां प्रोटेस्टेंट आया, रिनेसा पीरियड जो आप कहते हैं, आप देखिए रिनेसा पीरियड, इतिहास के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने इसको पढ़ा है तो आप रिनेसा पीरियड को ध्यान से पढ़ करके देखिए, वो आजादी का पीरियड है, वो चेतना के स्वतंत्रता का काल है, कल्पना जगत का काल है, प्रेम सौंदर्य का काल है, कलाओं का काल है, मतलब विचित्र किस्म के एक तरह से प्रस्फुटन का काल है। प्रतिभाएं प्रस्फुटित होने लगी, कल्पनाएं विकसित होकर के उड़ान भरने लगी, और देखते ही देखते उसने पूरे के पूरे वेस्ट की तस्वीर बदल दी, केवल चेतना की स्वतंत्रता के आधार पर। तो दोस्तों, भारत में जब हम बात करते हैं तो होता है कि हमारे पास इतने औद्योगिक संस्थान हैं और उसमें खर्च के लिए पैसा नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन ये तो एक पक्ष है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा जो पक्ष होता है वो होता है कि हमारा जो सामाजिक वातावरण है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो कैसा है, हमारे जीवन मूल्य कैसे हैं, हमारा समाज किन चीजों को रिगार्ड कर रहा है, जो समाज पैसों को महत्व देगा, जो समाज पैकेजेस को महत्व देगा कि वो कितने पैकेज की नौकरी कर रहा है, उस समाज में अनुसंधान की संभावनाएं कितनी रह जाएंगी, हमारे पास आईआईटी है, विश्व स्तर के आईआईटी, हमारे पास आईआईएम है, विश्व स्तर के आईआईएम है, शोध संस्थान है हमारे पास, विश्व स्तर के शोध संस्थान है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां से कितने शोध पत्र निकल रहे हैं, वहां से कितने वैज्ञानिक निकल रहे हैं, क्योंकि हमने वातावरण ऐसा बना दिया है। न तो हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा है और न हमारे पास जो तंत्र का वातावरण है वो ऐसा है। वहां एक अलग किस्म की भाई भतीजावाद है, वहां अलग किस्म का बॉसिज्म है। तो इन सब ने मिलकर के एक तरीके से हमारी चेतना की जो स्वतंत्रता है, जो उसकी उड़ान है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उनको निचोड़ कर रख दिया है, उनको कैद खाने में डाल दिया है। और हम अनुसंधान के मामले में सच पूछे तो बहुत दरिद्र होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो अनुसंधान पत्र जो लिखे जाते हैं, जो पब्लिश होते हैं, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है, मतलब उल्लेख करने के लायक ही नहीं है। हम अपने को विश्व गुरु मानते हैं, लेकिन पूरे दो देश में अगर हम विज्ञान और तकनीकी के योगदान के मामले में चले तो हमारा स्थान 21वां, 22वां, 25वां कुछ बैठता है। इतने नीचे हैं हम आबादी के मामले में, दूसरे नंबर में। विश्व गुरु रहे हैं लेकिन जब विज्ञान और तकनीकी की बात आती है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मित्रों, मैंने ये कुछ तथ्य आपको दिए हैं, खासकर एक वैज्ञानिक चेतना कैसे विकसित होती है उसको आधार बना करके। केवल मैंने एक सैद्धांतिक बात कही है, पृष्ठभूमि की बात कही है, मैंने इस व्यवस्था के बारे में संपूर्ण बात नहीं कही है कि और क्या कारण है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है, वो है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, मैं उन पर नहीं आया हूं क्योंकि वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन जो बहुत मूलभूत बात थी वो मैंने जरूर आपके सामने रखी है, खासकर वैज्ञानिक चेतना को लेकर, क्योंकि जब तक ये वातावरण में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक 2030 क्या पता नहीं, आगे और भी समय तो निकलते चले जाएंगे। हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ कर सकेंगे। हाँ, सामाजिक वातावरण को आप बदल दीजिए, माहौल बदल दीजिए, 2030 तक हम अपने उद्देश्यों को बिल्कुल पा लेंगे, क्योंकि वो प्रतिभाएं हमारे पास हैं, वो क्षमताएं हमारे पास हैं, वो संस्थाएं हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, बस केवल उस हवा और पानी की जरूरत है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर के एनालिसिस पर। बिना किसी एनालिसिस के ही आज मैं ढेर सारे न्यूज क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हैं। हाँ, आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये आपको निर्धारित करना है, आप उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करने को स्वतंत्र हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। बहुत से मित्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं और लगातार पूछते भी रहते हैं। मित्रों, मैं डेली उनके जवाब नहीं दे पाता, लेकिन दो प्रश्नों के मैं आपको आज जवाब दे रहा हूं। पहला तो यह है कि यहां क्लासेस के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने जानना चाहा है कि वो मीडियम क्या होगा। मित्रों, यहां जो क्लासेस होती है 15 दिन की, उसका मीडियम इंग्लिश ही होता हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश के शब्द बीच बीच में आते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको थोड़ी सी भी हिंदी आती है, थोड़ी सी मतलब मान लीजिए कि मेरे आप ऑडियो को समझ लेते हैं, आप हिंदी सिनेमा आप देख लेते हैं, हिंदी गानों को समझ लेते हैं, हिंदी बाजार में जाकर के अपना थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं, तो मान करके चलिए कि क्लास में भी आपका काम चल जाएगा। जहां आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप अपने मित्रों से पूछ सकते हैं जो आपके साथ बगल में बैठे हुए हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ। और मेरी कोशिश भी होती है कि जहां ऐसी टर्मिनोलॉजी आए जिसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगी, उनको फिर डेफिनेटली मैं वहां इंग्लिश वर्ड्स यूज करता हूं ताकि उनकी दिक्कतें कम हो सके। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी क्लास में लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर पर बेस्ड पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, काफी 100-150 पेज के पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश होगी, उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन मित्रों, अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है, एकदम ही इंग्लिश मीडियम से रहे हैं, समझने में दिक्कत होती है, तब फिर बात अलग है। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, साउथ के भी स्टूडेंट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टूडेंट होते हैं, मेरा अनुभव रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जितनी भी दिक्कत होती है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। दूसरी बात है मित्रों, ये पूछा जाता है कि कोचिंग जरूरी है कि नहीं है। देखिए मित्रों, इसके बारे में कोई बना बनाया उत्तर नहीं है। ये जरूरत आपकी अपनी आवश्यकता पर डिपेंड करती है। आपका क्या लेवल है, सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, ये तो मैं जरूर कहूंगा कि आप जो सामान्य तरीके की प्रिपरेशन होती है, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रिपरेशन को आधार बना करके चलेंगे, तो सिविल सर्विस की तैयारी बहुत कठिन हो जाएगी। इसके लिए एक अलग तरीके की तैयारी की जरूरत तो होती है, जो आपको मालूम होने चाहिए कि वो तरीका क्या है। या हो सकता है कि वो आपको मालूम ही हो, या हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति के जरिए मालूम पड़ जाए। अब ये आपके ऊपर है। फिर आप अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। आप देखिए कि अनसॉल्व पेपर आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप उनके आंसर देने की स्थिति में हैं या नहीं है, और आपको आंसर देने की स्थिति तक पहुंचना है। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप अपने लेवल पर तैयारी करके पहुंच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा किया भी जा सकता है। इसलिए इसके बारे में कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको सही रूप में बता सकेगा, मुझे इस बारे में संदेह है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसमें एक बहुत ही प्यारा मेल मुझे मिला है गुलाब खेड़ा का, जो काकोरी से है, मलिहाबाद से। तो गुलाब, इस प्यारे से मेल के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेल मुझे मिला है नीतीश कुमार बेगूसराय से, हैं वो बिहार से। उन्होंने खासकर अभी जो मेरी आप आईएएस कैसे बनेंगे पार्ट टू किताब वो ली, और उसमें उन्होंने कुछ चैप्टर्स पढ़े, और इसके बाद उन्होंने किताब की समीक्षा लिखी है, बड़ी प्यारी समीक्षा लिखी है। तो नीतीश, तुम्हारे इस फटाफट एक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कुछ मित्रों के मैं और नाम ले रहा हूं, वो है विकास मुंबई से, रुपेश शर्मा जयपुर से, डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव दरभंगा बिहार से, आनंद महाराष्ट्र से, पंकज कुमार पटना बिहार से, अच्छे लाल चौहान, रजनी शुक्ला इलाहाबाद से, अभिषेक पांडे लखनऊ से, शाहबाज हुसैन और रुपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।